नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार सरकार ने एआई के क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के साथ 468 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। बिहार विधानसभा ने ग्रामीण विकास विभाग का 237 अरब से अधिक का बजट पारित किया। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर पटना समेत राज्य भर में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। आज समिट का दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत मंडपम में बिहार पवेलियन का दौरा किया। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान राज्य सरकार ने 468 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और निवेश प्रस्ताव पर समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत आईआईटी पटना में 250 करोड़ रुपए के निवेश से एक रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी। वहीं एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 60 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को भी सहमति दी गई है। इस उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से नवाचार, इंक्यूबेशन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार टेक हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बिहार में जीसीसी की पॉलिसी, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया और इस पॉलिसी के तहत बिहार जो आएंगे उनके लिए एकदम नया जगह है और नए तरीके से हम पूरी तरह बिहार के लोग फैसिलिटेट कर उनको सहयोग करके बिहार में सारी इंडस्ट्री आए, ये हम लोग आग्रह करना भी चाहते हैं सभी लोगों से। एआई समिट के माध्यम से बिहार विकसित भारत में विकसित बिहार का सहयोग देना चाहते हैं।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एआई और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भारत में एआई की सीमाओं को आगे बढ़ाना विषय पर आधारित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में देश ज्ञान केंद्रित समाज बनने की दिशा में अग्रसर है।
भारत की नई पीढ़ी को एआई एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। काफी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई, भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन के से ज्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है।
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सुचारू रूप से जारी है। विधानसभा की कार्यवाही आज हंगामे के बीच शुरू हुई। प्रश्नोत्तर काल में स्वर्गीय रामविलास पासवान के कथित अपमान के मुद्दे को लेकर लोजपा रामविलास और राजद सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार के हस्तक्षेप के बाद हंगामा शांत हुआ और प्रश्नोत्तर काल पूरा किया गया। इस दौरान सदस्यों ने शिक्षा विभाग से जुड़े कई सवाल किए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि शीघ्र ही विभाग के अंतर्गत 45,000 ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
जो भी परिचारी के नियुक्तियां होंगी वो कर्मचारी चयन आयोग से होगा। दूसरी बात है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां हम लोगों ने की है। अभी इतनी नियुक्तियां चूंकि शिक्षकों की कमी है तो इस वजह से तो हम लोग ने TRE4 में भी अपनी जो भी अनुशंसाएं हैं और जो भी मांग है उसको दे दिया है। BPSC को 45,000 से ज्यादा है, उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग शुरू करेंगे आने वाले समय में। परिचारी का वो स्टाफ इससे होगा। जहां तक उन्होंने कहा साफ सफाई का, तो अधिकांश जगहों पर उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ सफाई की भी कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर सदन को आश्वस्त किया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और गर्म खाना परोसा जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि रसोइयों के हित का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
1,03,00,000 बच्चों को हम लोग मध्याह्न भोजन देते हैं और हम लोग के पास रसोइयों की संख्या करीब 2,00,000 है, तो इस वजह से कई जगह यह जरूरत पड़ जाती है कि हम लोग एनजीओ के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई करें, तो कहीं भी रसोइयों के हित का हम लोगों ने नुकसान नहीं होने दिया है कि इसके कारण रसोइयों का हित नुकसान दे, और अधिकांश जगहों पर वो बना रही हैं और इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण हम लोग दें।
भोजन अवकाश के बाद विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा हुई। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग का 237,01,17,90,000 रुपए का बजट पारित किया जाना जरूरी है।
अध्यक्ष महोदय, सदन में मांग संख्या 42 को गांव, गरीब महिला के रोजगार, गरीबों को आवास पूर्ण कराने, मजदूरों को रोजगार दिलाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वयन कराने के लिए 237,01,17,90,000 राशि सदन से पारित करने का अनुरोध करता हूँ।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जीराम जी योजना ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। श्री कुमार ने सदन को बताया कि इस योजना को लागू करने में तकनीकी हस्तक्षेप अनिवार्य कर पारदर्शिता लाई जाएगी, इससे निगरानी बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोकथाम लगेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के आवासहीन परिवारों को इसके तहत बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास में हम भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत के ग्रामीण विकास मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं महोदय कि 2024-25 में हमको जो आवास मिला महोदय, हमको 12,19,000 लक्ष्य मिला महोदय। इतना लक्ष्य अभी तक बिहार को कभी नहीं मिला था महोदय, और इस समय इस मुख्यमंत्री आवास योजना भी बिहार में हम शुरू किया है महोदय। इसलिए देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हमने शुरू किया था महोदय।
उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सक्षम न्यायालय की और लंबित की स्पष्ट परिभाषा से दाखिल खारिज मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। श्री सिन्हा ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन का किसी न्यायालय में दायर होना सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जाएगा।
केवल आवेदन, आपत्ति, अभ्यावेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जाएगा, ये हम विभाग से ऑर्डर जारी करवाए हैं महोदय। उपयुक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर, टेम्पररी इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन अथवा अंतरिम आदेश प्रभावी हो तभी राजस्व कार्यवाही पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट पारित नहीं किया गया वहां राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। श्री आनंद ने विधानसभा में कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाए।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।
इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू है और आगे भी लागू रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पदाधिकारियों को राज्य में घोरपड़ास के आखेट के लिए शूटरों की संख्या 200 से बढ़ाकर 400 किए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आखेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और किसानों को फसल क्षति होने पर अनुदान, सहायता राशि और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने सांप को वन्य जीव घोषित करते हुए सर्पदंश से मृत्यु की स्थिति में वन्य प्राणी से हुई क्षति के समान 10,00,000 रुपए के मुआवजा भुगतान की व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन आज दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी तक किया जाएगा। बोर्ड की सूचना के अनुसार इस वर्ष परीक्षा में 15,00,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें 7,85,726 छात्राएं हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 1,699 केंद्र बनाए गए हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई केंद्रों पर आज देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसे लेकर छात्रों और उनके अभिभावकों ने हंगामा किया। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई। केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। इधर प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर आज से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। गया जिले के रहने वाले शुभम कुमार ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के प्रथम चरण में 100% के साथ देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शुभम परिणाम में राज्य भर में प्रथम स्थान पर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुभम को इस सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पटना के जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानमंडल परिसर स्थित जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर जननायक के पैतृक गांव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और अन्य गणमान्य लोगों ने जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजद की ओर से पटना के बापू सभागार में जननायक की स्मृति में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जननायक के विचारों, आदर्शों और उनके योगदान को याद किया। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में आज खेले गए पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से पराजित कर दिया। वहीं आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच श्रीलंका के पालेकेले में खेला जाने वाला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। एक अन्य मुकाबले में नेपाल की भिड़ंत स्कॉटलैंड से इस समय हो रही है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। रोहतास जिले के सोसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 319 पर शैक्षणिक परिभ्रमण पर जा रही एक स्कूल बस की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बस पर सवार 2 शिक्षकों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं। पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत शेरवा मंडीहा में बाघ के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाघ ने 3 भैंसों को भी जख्मी कर दिया है। वन विभाग की टीम बाघ की खोज में लगी है। भागलपुर समाहरणालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि जिलाधिकारी के सरकारी ईमेल पर धमकी भरा मैसेज मिला जिसके बाद जांच और सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार सरकार ने एआई के क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के साथ 468 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। बिहार विधानसभा ने ग्रामीण विकास विभाग का 237 अरब से अधिक का बजट पारित किया। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर पटना समेत राज्य भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।